पैराग्राफ चेंज। हमने स्त्री विषयक मुद्दे पर गोस्वामी जी की सोच को आचार्य शुक्ल के लिखे हुए को प्रमाण मानकर विस्तार से इस नाते उद्धृत किया है कि गोस्वामी जी की स्त्री विषयक सोच का मूलवर्ती पहलू सामने आ जाए। गोस्वामी जी के स्त्री विषयक विचारों पर उनके पक्ष से जितना भी कहा जा सकता था शुक्ल जी ने कह दिया है। अन्य लोगों ने भी गोस्वामी जी के पक्ष में अपने अपने ढंग से बहुत सी दलीलें दी हैं। मसलन, गोस्वामी जी की तमाम उक्तियाँ प्रसंग विशेष के तहत औरों के द्वारा कही गई है, उन्हें गोस्वामी जी का विचार न समझना चाहिए। पृष्ठ संख्या 237 कि गोस्वामी जी ने स्त्री के बारे में कत विधि सृजी नारी जग माही पराधीन सपनहु सुख नाही जैसी उक्तियाँ भी लिखी हैं कि माता पुत्री पत्नी भगिनी आदि के ढेरों आदर्श चरित्र भी उन्होंने रचे हैं आदि आदि। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वस्तुतः स्त्री विषयक गोस्वामी जी की सोच का जो बुनियादी यथार्थ है वह यही है कि वेद शास्त्र विहित समाज व्यवस्था में जो गोस्वामी जी के मत से आदर्श समाज व्यवस्था है, स्त्री के लिए उसके आचरण से संबंधित जो भी विधि विधान तथा निर्देश है, उसके कर्तव्यों का जो प्रावधान है, स्त्री के लिए निर्दिष्ट जो मर्यादाएं हैं, स्त्री उनके दायरे में रहे, उनके अनुकूल आचरण करे, ऐसी स्त्री ही गोस्वामी जी की मनोभूमि की आदर्श स्त्री है। निर्दिष्ट मर्यादाओं से, निर्दिष्ट आचरण संहिता से वह तनिक भी हटी नहीं कि वह उनकी कठोर आलोचना की पात्र बनी है। ऐसी स्त्री माता पत्नी पुत्री भगिनी सब रूपों में उनकी भर्त्सना और लांछना का ही पात्र बनी है। वस्तुतः मनुस्मृति के इस विचार से कि स्त्री स्वतंत्र ना अर्हति गोस्वामी जी की पूरी तरह सहमत है। जैसा हमने ऊपर शुक्ल जी के साक्ष्य पर बताया है, भक्ति के दायरे में भी वह उन्हें तभी स्वीकार है जब भक्ति मार्ग में चल सकने में वह पक्की हो। लोक व्यवस्थापक रूप में गोस्वामी जी के स्त्री विषयक विचारों का यही सार और यही सच है। स्त्री संबंधी गोस्वामी जी के ये विचार कितना उनके विरक्त रूप के तहत आए हैं, कितना लोक व्यवस्थापक के रूप में, कितना अपने और अपने जैसे विरक्तों की विरक्ति को पुष्ट करने के संदर्भ में, इस बारे में अपने अपने विचार हो सकते हैं। मूलवर्ती सच वही है जो आचार्य शुक्ल के साक्ष्य पर हमने ऊपर प्रस्तुत किया है। पैराग्राफ चेंज। गोस्वामी जी के उक्त चारों रूपों के साक्ष्य पर उनके प्रदेय की समग्र मूल वक्ता की बात करें तो कहना होगा कि अपने व्यक्ति के रूप में वे जितने पारदर्शी और मानवीय, भक्त रूप में जितने प्रशस्त हृदय और कवि रूप में जितने महनीय और सहज स्वीकार्य है, अपने समय के आगे हमारे अपने समय तक अनेक बिंदुओं पर हमारे प्रेरक मार्गदर्शक है। लोक व्यवस्थापक रूप में उनकी सामाजिक सोच के अनेक पहलू न केवल उन्हें अपने युग में सीमित करते हैं, अपने समय के ही निर्गुण संतों के बरक्स उनकी सामाजिकता सोच पर गंभीर प्रश्न उठाते हैं। निर्गुण संत अपण होते हुए भी जहाँ अपने जिए भोगे के अनुभव के चलते अपने समाज दर्शन में अपने समय का अतिक्रमण कर हमारे समकालीन बनते हैं, गोस्वामी तुलसीदास का समाज चिंतन रूढ़ और हमारे समय के संदर्भ में अप्रासंगिक हो उठता है। पृष्ठ संख्या 238। स्त्री मुक्ति, दलित मुक्ति, दबी कुचली अस्मिताओं के हमारे समय में मुक्ति अभियानों और उनसे जुड़े विमर्श में गोस्वामी तुलसीदास का समाज दर्शन किस तरह अप्रासंगिक है यह कहने की बात नहीं है। उनके प्रदेय की समग्र मूल्यवत्ता की बात करें तो वाल्मीकि, व्यास, कालिदास आदि जिस तरह विचार और विचारधारा के तमाम पहलुओं पर हमारे समय के लिए अप्रासंगिक और चली आ रही विचार परंपरा से बेंधे होते हुए भी अपने कर्तृत्व के दूसरे पहलुओं पर अपने समय से आगे हमारे अपने समय में भी हमारी प्रेरणाओं के स्रोत बने हुए हैं, महनीय है। गोस्वामी तुलसीदास भी समाज चिंतन की अपनी सीमाओं के बावजूद अपने कर्तृत्व और व्यक्तित्व के दिगर आयामों पर काल के सहयात्री बने हुए आज भी हमारे बीच महत्वपूर्ण बने हुए हैं और बने रहेंगे। गोस्वामी तुलसीदास का कर्तृत्व जिन बिंदुओं पर आज भी हमारे लिए प्रेरक और महत्वपूर्ण है, उसे विरासत के रूप में सहेजते और संवर्धित करते हुए उनकी विचारगत वे सीमाएं भी बराबर हमारे ध्यान में रहेंगी, जिनसे वे बंधे रहे, जिनका अतिक्रमण वे नहीं कर सके। ग्रहण और त्याग के इसी संदर्भ में वाल्मीकि, व्यास, कालिदास की तरह गोस्वामी जी भी हमारे समय में हमारे साथ हैं और आगे भी रहेंगे। पैराग्राफ चेंज। हमारी मूलवर्ती चर्चा इसी बिंदु पर समाप्त होती है, किंतु उसी के भीतर से उपजी मन की एक अधेड़ बुन है जो चर्चा की परिसमाप्ति के बाद भी पूरी तरह शांत नहीं हुई है, अभिव्यक्ति की हेतु कस मसा रही है। सहृदय पाठक इस अधेड़ बुन से होकर गुजरे और उनकी सार्थकता निर्थकता पर खुद निर्णय ले, इस नाते उसे सामने लाना जरूरी है। स्त्री विषय गोस्वामी जी के विचारों का हवाला हम दे चुके हैं, हमारा अपना अभिमत भी इस संदर्भ में स्पष्ट हो चुका है। स्त्री उनकी संवेदना के दायरे में तभी तक मान्य है जब तक वह शास्त्र और वेद निर्दिष्ट आचरण संहिता का, उसकी मर्यादाओं, विधि निषेधों का पालन करने वाली हो, उससे हटी नहीं कि उनकी भर्त्सना और लांछना का पात्र बनी है। स्त्री निंदक उक्तियां गोस्वामी जी ने अपनी विरक्ति को पुष्ट करने के लिए कही है, अपने जैसे विरागियों की विरक्ति का बनाए रखने के लिए कही है, यह शुक्ल जी की सफाई है, हमारा सरोकार जिससे नहीं है। गोस्वामी जी वस्तुतः स्त्री निंदक हैं या उनके लोक व्यवस्थापक रूप में उन पर दबाव डालकर उन्हें स्त्री निंदक वचन कहने को प्रेरित किया। तुलसीदास के लिखे हुए और शुक्ल जी तथा अन्य विद्वानों के लिखे कहे के आधार पर सुधी पाठक अपने निर्णय पर पहुंचे। पृष्ठ संख्या 239। हमने अपना मत व्यक्त कर दिया है कि स्त्री उनकी संवेदना में कहाँ तक स्वीकार्य और अस्वीकार्य है। जहाँ तक बात मन की अधेड़ बुन की है, सब कुछ के बावजूद मन में यह जिज्ञासा कुल बुलाती रहती है कि पंडित ज्ञानी होते हुए भी काम भावना के वशभूत जो व्यक्ति अनामंत्रित मर्यादा और शिष्टाचार को तोड़ते हुए ससुराल पहुंच गया हो, क्या व्यक्ति रूप में वह स्त्री विरोधी हो सकता है? उसे स्त्री से प्रताड़ना मिली, वह विरक्त हुआ, आजीवन विरक्त रहा, अपने काम का उसने राम में बदल डाला, उसकी कामाशक्ति रामाशक्ति बन गई, यह सब तो ठीक है, परंतु तुलसीदास के व्यक्ति रूप की चर्चा करते समय जैसा मैंने लिखा है, रत्नावली स्त्री उसके जीवन के बाहर भले ही हो गई हो, उनके मन से बाहर नहीं हो सकी। चाहकर भी तुलसी उन्हें भुला नहीं सके, उनके समूची रामाशक्ति के बावजूद, उनके समूचे वैराग्य के बीच उनके अवचेतन में कहीं गहरे बैठी वह जब तक उनकी मनोभूमि में कोंधती रही है। काम को वेगवान अनुभव भी जो उन्हें बिना बुलाए ससुराल तक ले गया, उनके वैराग्य के तले कितना ही गहरे क्यों न दबा दिया गया हो, वह भी उनकी चेतना से पूरी तरह निशेष नहीं हो सका, उसे तुलसी मार नहीं सके हैं। आश्चर्य होता है तुलसीदास के गहरे आत्मसंघर्ष पर। काम और राम के बीच के महासमर को आजीवन कितना झेला होगा उन्होंने, सहानुभूति होती है तुलसीदास से इस बिंदु पर। साक्ष्य की जरूरत हो तो साक्ष्य भी है, काम को रोंद कर जिस राम को तुलसी ने पाया, जीवन भर जिससे गहरे आसक्ति भाव से जुड़े रहे, उनकी राम साधना की जो फलश्रुति उनका रामचित मानस है, उनकी परिसमाप्ति होते हुए एकदम अंतिम जो दोहा उन्होंने कहा है, उनकी मनोभूमि में कहीं गहरे दबाया हुआ कामाशक्ति का उनका अपना अनुभव बरबस जादू वही जो सिर पर चढ़कर बोले कि तर्ज पर जैसे अपने समूचे प्रभाव के साथ उस दोहे में बोल उठा है। रामचरितमानस का अंतिम दोहा इस तरीके से है, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही कह जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। अर्थात जिस प्रकार कामी व्यक्ति को स्त्री प्रिय होती है, लोभी को धन, हे राम उसी तरह तुम निरंतर मुझे प्रिय लगते रहो। प्रश्न है कि जिस तुलसी जैसे पंडित विदग्ध कवि के इशारे पर उपमाएं और उत्प्रेक्षाएं नाचती हो, अपने और अपने आराध्य के बीच प्रियतमा को व्यक्त करने के लिए उसे और उपमा नहीं मिली, वही उनका भोगा हुआ अनुभव ही उनकी लेखनी में सजी हुआ। मन की भीतरी सात पर्दे चीरते हुए जो गोस्वामी जी की मनोभूमि पर छा गया, यही अधेड़ बुन समाप्त होती है। विज्ञ सहृदय पाठक सोचे और तय करे कि क्या सचमुच ऐसा व्यक्ति बुनियादी तौर पर स्त्री विरोधी हो सकता है। विरक्ति वैराग्य की बातें अलग, उसके मन की भीतरी तहों में बसी स्त्री छवि क्या संपूर्णता मिट सकती है?